खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र हो कि आज हम सब फिर जिंदा हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि हम खुदावंद के घर में हैं। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, सीखें, समझें, आए हम सब खुदा के हजूर झुकें और उस निजात दहिंदा के हजूर अपनी जिंदगियों की तरबियत और नसीहत के लिए इस जदीद दौर में खुदावंद की हिकमत और दनाई मांगें, ताकि हम इस ज़मीन पर गैर कौमों के लिए, अपने घर वालों के लिए, कलीसिया के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए फलदार दरख्त साबित हों। तो आए हम दुआ करें। खुदा बाप, आज की सुबह के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं, आज के कलाम के लिए जो तूने मुकर्रर कर दिया तेरे शुक्रगुजार हैं। मेरे लबों का रखवाला बन खुदा बाप, ताकि तेरी जिंदा आवाज़ तेरे लोगों तक पहुँचे और खुदावंद ना के सिखाने बल्कि सीख कर 100 गुना फल लाने वाला बनो। और खुदावंद, आज जितने बहन भाई बुजुर्ग बच्चे आए हैं खुदावंद, उन सब के लिए तेरा शुक्र करता हूँ जो किसी वजह से, बहानों की वजह से, सुस्ती, लापरवाही, सर्दी को या किसी और बात को अपने आगे रखते हुए तेरे हजूर हाजिर नहीं हो सके। खुदा बाप उनको अकल और दनाई दे, और इस ज़मीन पर हमें दिन गणना सिखा, ताकि इस ज़मीन पर तेरी मर्जी को और तेरे हजूर बैठ कर तेरे कलाम में से सीखने वाले बने। तो आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, क्योंकि तूने कहा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, और तू ऐसे प्रस्ताव ढूंढता है जो तेरी प्रस्तुत शुरू और सच्चाई से करें। के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जिस दौर में, जिस वक्त में से हम गुजर रहे हैं और जिंदगी गुजार रहे हैं, ये दौर जदीद दौर है, इल्मियत का दौर है, और इसमें लोग जदीद दौर में चाहते हैं हर किस्म के काम में ज्यादा से ज्यादा मालूमात। और यीशु मसीह ने अपने दौर में ये बात वाज़ेह तौर पर अपने शागिर्दों पर जाहिर की, और अपने सुनने वाले उन तमाम रबियों पर, उन फरीसियों पर, उन फकीयों पर जो शरीयत के क्या करते रहनुमा थे, उन सब पर ये वाजिया बात कर दी, जैसे कि कुदरती निजाम है कि बगैर जड़ के कोई फल पैदा नहीं हो सकता। वैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लोग तुम्हें क्या जानेंगे, तुम्हारे कामों से जानेंगे कि तुम किसके मानने वाले हो। जैसे मिसाल के तौर पर यह दुनियावी और रूहानी मिसाल है कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। दरख्त के फल से पता चलता है कि उसमें फल लगा है या फिर उसका फल सड़ गया है। और ये बात यीशु मसीह ने कही थी कि तुम जान लोगे, लोग जानेंगे कि जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत करोगे। सो इसलिए मेरे साथ निकालें नए अहदनामा में से इफिसियों 2 बाप, उसकी 19वीं आयत से 22वीं आयत तक पढ़ेंगे, और आज हम 21वीं आयत से चंद एक बातें सीखेंगे। इससे पहले 21वीं आयत को शुरू करेंगे आपकी याद दहानी के लिए कि हमने क्या सीखा। 19वीं आयत में पालूस कहता है, पास अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। 20वीं आयत, और रसूलों और नबियों की नींव पर, जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यस्सु है, तामीर किए गए हो, उसी में हर एक अमारत मिल मिलाकर खुदा में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसी में बाहम तामीर किए जाते हो, ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। हमने कल सीखा था कि यीशु मसीह को यहाँ पर कोने के सिरे का पत्थर, यीशु मसीह को क्या कहा गया है, चट्टान कहा गया है, यीशु मसीह को दरवाज़ा कहा गया है, यीशु मसीह को चरवाहा कहा गया है, यीशु मसीह को जिंदगी का नूर कहा गया है, यीशु मसीह के बहुत से नाम बाइबल मुकद्दस में क्या है, दर्ज हैं, उसके किरदार के वसीला से, उसके काम के वसीला से। और फिर हमने रसूलों को देखा था कि रसूलों की बुनियाद। तो ये बातें हमने कल सीखी कि यीशु मसीह कौन है, उसका लकब क्या है, उसके काम क्या है और उसकी ज़िंदगी किसकी मर्जी को जाहिर करती है। सो आज हम इससे पहले के 21वीं आयत को शुरू करें, इस बात पर तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। पालूस कहता है, मसीह यसु में तमीर किए गए हो। सादा सी बात, इस आयत को हम मुकम्मल करते हुए सादा सी मिसाल आपको देना चाहता हूँ कि जब हम घर बनाते हैं तो उसकी बुनियाद डाली जाती है, उस बुनियाद के ऊपर मकान डाला जाता है और फिर लोग उसमें रहते हैं। सो पालूस सादा तौर पर कहता है कि यसु मसीह बुनियाद है। रसूलों के पैगाम के वसीला से क्या हुआ, वो घर मुकम्मल हुआ और उस घर को क्या कहा गया है, कलीसिया कहा गया है। और यहाँ पर वो जो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि यसु मसीह में क्या किए जाते हो, तामीर किए गए हो, उसमें बनाए गए हो, उसमें तुम पर काम किया गया है, मुकम्मल तौर पर तुम्हें उसमें तामीर किया गया है और मुसलसल तौर पर इस ज़मीन पर तुम पर काम किया जा रहा है जब तक मसीह ना आ जाए। और कलीसिया को पादरी साहबान उस दौर में, पुराने दौर में देखते हैं, खुदा ने रसूल और नबी और क्या बख्शे, काहिन बख्शे कि उनकी तामीर हो। और आज के दौर में खुदा ने क्या बख्शे हैं, पादरी साहबान बख्शे हैं कि कलीसिया की तामीर हो। तामीर क्या है, मेरे साथ एक हवाला निकालें। तमीर से मुराद यानी कि तरक्की हो, उनको बढ़ोती मिले, वो मसीह की पहचान में बढ़ें और मसीह में गुंदे रहें, मसीह में जड़ पकड़ते जाएं, मसीह में फल पैदा करते जाएं। और इस खिदमत के लिए खुदा का कलाम कहता है इफिसियों 4 बाब उसकी 11वीं आयत में पालूस कहता है, और उसी ने बाज को रसूल यानी कि जो यसु मसीह के शागिर्द थे और दूसरे रसूल थे, और बाज़ को नबी यानी जैसे के मूसा, जैसे के एलिया नबी, जैसे के दाऊद नबी, और बाज़ को मुबशर जैसे के हम कह सकते हैं पालूस रसूल ने मुबशर भी खिदमत भी की, उसके बाद और दूसरी खिदमात को देखते हैं। मुबशर वो होता है जो मसीह का पैगाम उन लोगों तक लेकर जाता है जिन्होंने पहले मसीह का नाम नहीं सुना, यानी कि दूर दराज के इलाकों में, इर्द गिर्द के चकूक में, या लोगों को बताना। मुबशर का मतलब यानी कि मसीह का पैगाम देने वाला। और बाज को चरवाहा, चरवाहा यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है पादरी की हैसियत से, और बाज को उस्ताद बनाकर यानी कि वो जो खुदा के कलाम की तलीम को गहरे से गहरे तौर पर सिखाते हैं, पढ़ना लिखना सिखाना और उसकी तफसीर करना। इसलिए 12वीं आयत में लिखा है ताकि मुकद्दस लोग कामल बने, मुकद्दस लोग कामल बने। कामल बनने के लिए जो लफ्ज़ यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ताकि वो क्या बने, बालक बने, जैसे बच्चा होता है, नौजवान होता है और फिर बालक होता है। पालूस रसूल यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कालम कामल का, यानी के बालक बने, यानी के सयाने बने, समझदार बने, रूहानी तौर पर इस काबल हो जाएं कि क्या करें, कि खिदमत गुजारी का काम किया जाए। तामीर किए जाने का मतलब यही है कि तामीर होकर, तैयार होकर, ट्रेन करना जिसे कहते हैं, सिखाना, ताकि दूसरों को जाकर सिखाया जाए, और यही खिदमत गुजारी का काम है। और जब खिदमत गुजारी का काम किया जाता है तो क्या होता है, मसीह का बदन तरक्की पाता है, तामीर होता है, बढ़ता है। तरक्की से मुराद यानी कि फलना, बढ़ना, जैसे रोजमर्रा की जबानदारी में ये लफ्ज कारोबारी लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है कि ये फलां बंदा अपने कारोबार में तरक्की कर रहा है, यानी कि वो आगे बढ़ रहा है, फलां बेटी अपने सिलाई स्कूल के हुनर में आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। सफालूस रसूल कहता है कि मुबशर का, पादरी साहबान का, देने का खुदा का मकसद कलीसिया को क्या है? कि वो मसीह में तमीर हो, वो मसीह में बालक बने, वो मसीह में समझदार बने, ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए। तमीर का यहाँ पर लफ्ज यही है कि यसु मसीह में एक कर देना, यसु मसीह में तमाम ईमानदारों को मसीह का बदन बनाना। और यही आयत 21वीं आयत में पालूस रसूल कहता है, उसी में हर एक अमारत मिल मिलाकर खुदा में एक पाक मकदस बनता जाता है। जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में सिखाया कि यसु मसीह के बहुत से नाम हैं, वैसे ही बाइबल मुकद्दस में जो लोग यसु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो लोग नए तौर पर पैदा हुए हैं, जिन्होंने यसु मसीह को नजात दहिंदा कबूल किया है, बाइबल मुकद्दस उनको बहुत से नामों से पुकारती है। जैसे यहाँ पर कहा गया है, उसी में हर एक अमारत मिल मिलाकर। अमारत से जो लफ्ज़ यहाँ पर हम सीखने को मिलता है, हमें इंग्लिश में से क्या कहा गया है? चर्च कहा गया है। उर्दू में से कलीसिया कहा गया है। सो हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदा में एक पाक मकदस बनता जाता है। तो ईमानदारों के बहुत से लकब हैं, जैसे कि इमाल की किताब में देखते हैं तो शिगिर्द जब यसु मसीह की मनादी कर रहे थे, बहुत से लोग यसु मसीह को कबूल कर रहे थे, तो वो पहली दफ़ा इंतातिया में, ये हमें अमाल की किताब में जिक्र मिलता है, वो अंतातिया में पहली दफ़ा मसीही कहलाए। मसीही का मतलब है यानी कि मसीह के हम शक्ल। हम शक्ल से मुराद यानी ये नहीं कि उनका चेहरा मसीह जैसा है, नहीं, उनका बैठना, उनका बोलना, उनकी ज़िंदगी का चलना बैठना और उनका ज़िंदगी तरीका बसर करना। इमाल की किताब में हमें ये जिक्र मिलता है कि वो पहली दफ़ा क्या कहलाए? मसीही कहलाए। किस लिए? उनका चाल चलन, उनका पैगाम और उनकी गवाही। ये उनकी गवाही थी, आप इस हवाले को देख सकते हैं नेहनामा में, इमाल की किताब गालबन 11वां बाप, उसकी आप 26वीं आयत में देखते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि कलीसिया, कलीसिया का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, यानी कि वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, वो लोग जो तारीकी से बुलाए गए हैं नूर में। बाइबल में, बाइबल मुकद्दस में खुदा कलीसिया को बहुत से मुख्तलिफ नामों से पुकारता है, जैसे कि ये मेरा बदन है कलीसिया कहा गया है, मेरी दुल्हन कलीसिया को कहा गया है, अमारत कलीसिया को कहा गया है, खुदावन की खेती कलीसिया को कहा गया है। मेरे साथ एक हवाला निकालें, अमारत का जो लफ्ज़ हम देख रहे हैं यहाँ पर नए अहदनामा में, पहला करंथियों 3 बाब उसकी 9वीं आयत में पालूस रसूल इस बात को कहता है कलीसिया को मुखातब करते हुए, और ये नाम देता है। वहाँ पर लिखा है पहला करंथियों 3 बाब उसकी 9वीं आयत में, जो निकाल सकते हैं वो पढ़े, जो नहीं वो गौर से सुने। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती, यानी कि वो ऐसी जमीन जहां पर काम किया जाता है। कलीसिया को खेती भी कहा गया है, जिसे खेत कहते हैं। जैसे कोई किसान खेत में काम करता है, किस लिए? किस लिए मेहनत करता है? ताकि उसे वो तैयार करे और जब बीज बो तो बहुत सी फसल हासिल हो। यसु मसीह ने भी वैसे ही बहुत से लोगों को मुकरर किया है ताकि कलीसिया में, जैसे कि मेरी पादरी की खिदमत है, मेरी खिदमत, मेरी जिम्मेदारी दे है कि हर रोज आप तक खुदा का ताज़ा कलाम पहुंचे, ये मेरी जिम्मेदारी है, और दुआ ये है कि आप बहुत सा फल लाएं। जैसे जमीन में बीज बोते हुए बहुत से दाने उगते हैं, बहुत से सड़ जाते हैं, बहुतों को परिंदे उठा ले जाते हैं, बहुत धूप की वजह से जल जाते हैं, बहुत को पानी नहीं मिलता, बहुत को रोशनी नहीं मिलती। बहुत दफ़ा ऐसे ही खुदा के कलाम को जब हम सुनते हैं ऐसा ही होता है, बहुत दफ़ा हम सुस्त हो जाते हैं, बहुत दफ़ा हम ध्यान नहीं देते, बहुत दफ़ा हम दुनिया की ख्वाहिशों में फंस जाते हैं, बहुत दफ़ा हसद, बुगज, लड़ाई झगड़ा और दूसरी सोचें उस कलाम को दुबा लेती है और हम अपनी हठ धर्मी यानी कि अपनी आप को बढ़ाते हुए खुदा के कलाम को वक्त काम नहीं करने देते, नहीं करने देते। तो पालूस कहता है तुम खुदा की खेती हो और खुदा की अमारत हो। अमारत से मुराद जिसे हम कहते हैं घर, बाइबल मुकद्दस में ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया है कि तुम खुदा का मकदस हो। इसी बाब में उसकी 17वीं आयत में लिखा है तुम खुदा का मकदस हो, पाक मकदस। पहला ग्रंथियों 6 बाब उसकी 19वीं आयत में लिखा है कि तुम क्या हो, रूहुल कुद्दस का मकदस हो। मकदस से मुराद यानी के हैकल यानी के रहने की जगह जहां पर कोई गुजर बसर करता है। और फिर बाइबल में मकदस का नाम इस्तेमाल किया गया है, कलीसिया का नाम इस्तेमाल किया गया है, दुल्हन का नाम इस्तेमाल किया गया है, खून खरीदे हुए लोगों का नाम इस्तेमाल किया गया है, मेरे प्यारे लोग का नाम इस्तेमाल किया गया है, भेड़ों का नाम इस्तेमाल किया गया है, खुदा के चुने हुए लोगों का नाम इस्तेमाल किया गया है, और फिर खुदा में मसा शुदा लोगों का नाम इस्तेमाल किया गया है, खुदा के बेटे और बेटियां के तौर पर नाम इस्तेमाल किया गया है। तो पालूस रसूल कहता है कि कलीसिया क्या है, खुदा की इमारत है। तो आज हमें इसमें से क्या सीखने की जरूरत है कि हम इमारत के तौर पर हैं। आज सबसे बड़ी जो मुश्किल दरपेश है वो क्या है, ईमानदारों को आपस में इत्तफाक नहीं है, ईमानदार आपस में सुलह नहीं रखते। जहां पर पालूस कहता है उसी में हर एक इमारत मेल मिलाकर आज कलीसियाएं क्यों बेफल हैं, क्योंकि इत्तफाक नहीं। पादरी साहबान क्यों आज जुदा जुदा है, क्योंकि मोहब्बत नहीं। क्योंकि बहुत दफा पालूस रसूल, बहुत दफा खुदा का बंदा पतरस और बहुत दफा खुदा का बंदा यकूब कहता है कि तुम कलाम सुनते हो लेकिन उस पर अमल नहीं करते हो। आज कलीसिया का यही हाल है, बहुत से लोग, सारे नहीं, बहुत से लोग, कलीसिया में से 25% लोग खुदा से मोहब्बत करते हैं और 75% जो सिर्फ क्या कहते हैं कि गुजारा करें, जिंदगी को गुजारें दुनिया की ख्वाहिशों में, सारी रात जागना पसंद करते हैं लेकिन खुदा के घर की तरफ आना पसंद नहीं करेंगे। तामीर क्यों नहीं होते, क्यों तरक्की नहीं होती, पालूस रसूल इस बात पर कहता है तामीर किए गए हो उसी में हर एक इमारत मिल मिलाकर खुदा में एक पाक मकदस बनता जाता है। पाक मकदस से मुराद यानी कि ऐसा बदन, ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग बनते जाते हैं जो समझदार हैं, जो अक्लमंद हैं, जिनकी जिंदगी से नूर जाहर होता है, जिनकी जिंदगी से सच्चाई जाहर होती है। सो आज सवाल ये है कि क्या आज हम नूर की मानत चमक रहे हैं या फिर तारीकी को जाहर कर रहे हैं। आज हम बरकत का बायस हैं किसकी, किसी के लिए, या फिर लानत का। आज हम बरकत में जिंदगी गुजार रहे हैं या फिर लानत में, जैसे मूसा ने बनी इसराइल कौम से कहा था कि मैंने लानत और बरकत को तुम्हारे सामने रख दिया, जैसे यशवा ने कहा था कि आज के दिन तुम चुन लो कि तुम किसकी इबादत करोगे। इसलिए आप सबको जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये पादरी साहब की ही खिदमत नहीं बल्कि आप सबकी जिम्मेदारी है कि जाकर अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को क्या करें, बताएं, और जरूरत पड़े तो मजबूर करें। यीशु मसीह ने ये मिसाल इसीलिए उस बेवा औरत की दी थी कि वो दुआ करती रही, दुआ करती रही, और आखिर को उस बे ईमान काजी ने उसकी आवाज को सुना और कहा कि मैं इसका इंसाफ करूंगा। यीशु मसीह हमें कहता है एलची, ये भी कलीसिया के हर एक फर्द के लिए नाम है। एलची, एलची वो होता है जो पैगाम देता है, जैसे डाकिया कहते हैं आज के नए दौर में, डाकिया भी कहा जाता है, और उस दौर में एलची को इस्तेमाल करते थे जो पैगाम लेकर जाता था जंग के दौरान, जो पैगाम लेकर जाता था मुल्क से मुल्क में के अपने भेजने वाले के बारे में बताए कि उसका पैगाम क्या है। तो खुदा ने हमको इस जमीन पर भेजा है कि उसका पैगाम दें। सवाल ये है कि क्या हम उसका पैगाम दे रहे हैं या फिर इस जिंदगी में सिर्फ गुजर बसर कर रहे हैं कि कब ये जिंदगी खत्म हो। इन बातों पर गौर कीजिए क्योंकि आप मसीह में उसकी कलीसिया, उसका बदन, उसकी दुल्हन, उसके ऐसे लोग हैं जो पाक और मुकद्दस और खास मकसद के लिए मुकरर किए गए हैं, मखलूक हुए हैं ताकि उसकी मर्जी को पूरा करें। स्वयं खुदा के सुर झुकें ताकि हर रोज उसमें तमीर होते जाएं, हर रोज उसके कलाम को सुनें, ना के कहें कि एक दिन खा लिया खुदा का कलाम और 8 दिन उसे मुंह ना दिखाया। हम हर रोज रोटी खाते हैं अपनी जिस्मानी ताकत के लिए, इसलिए हर रोज रूहानी खुराक खाने की जरूरत है ताकि हम रूहानी तौर पर तरक्की करें। खुदा मदद आपको बरकत दे, आए हम दुआ करें। खुदा बाप आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे और हम जैसे अपनी जिस्मानी रोटी की फिक्र करते हैं रूहानी रोटी की भी फिक्र करें, बोझ ना समझें, लाचारी से नहीं बल्कि शुक्रगुजारी से और दिल की खुशी से और पूरे दिल और पूरी जान और पूरी अकल और पूरी ताकत से खुदा हम तुझसे मोहब्बत रखें। आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, यही दुआ मांगते हैं तेरे मुकद्दस बेटे अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह के नाम में, आमीन।